ओम शांति। आज हमारे जो रिलेशंस हैं, जिन्हें हम संबंध रिश्ते कहते हैं, चाहे वो नज़दीक के हैं या दूर के हैं, चाहे हमारे घर के रिश्ते हैं या अपने आसपास के लोगों के साथ हमारे रिश्ते हैं, उनमें अगर थोड़ी सी भी कठिनाई महसूस हो रही है, उस कठिनाई का कारण क्या है? क्यों आज हम एक दूसरे को सुख देने के बजाय एक दूसरे को दुख दर्द देने के निमित्त बन जाते हैं? क्या होता है कि कई बार हमारे नज़दीक के लोग, हमारे सबसे ज़्यादा चाहने वाले लोग ही हमें परेशानी में डाल देते हैं? क्यों नहीं आज हम संबंधों का सुख ले पा रहे? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो रिश्तों में अक्सर देखने में आती है, जो इस खुशनुमा जिंदगी को बदनुमा बना देती हैं? कौन सी ऐसी बातें? क्यों नहीं आज लोगों के बीच में तालमेल बन पाता? क्यों हमारी जो गृहस्थी की गाड़ी है, जो हमारे संबंध, चाहे पति पत्नी का है, भाई बहन का है, सास बहू का है, बॉस सबॉर्डिनेट का है, कोई भी संबंध है, उस संबंध में तनाव, टकराव और बिखराव क्यों देखने को मिलता है? क्या अहंकार उसके लिए जिम्मेवार है या कोई और चीजें जिम्मेवार है? क्या क्या चीजें हैं जो जिम्मेवार हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन जिम्मेवार हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जिम्मेवार है, डाउट शंका जब हो जाती है किसी के ऊपर, खाम खा दूसरे के ऊपर हम डाउट करते हैं, वो जिम्मेवार है? क्या जिम्मेवार है जिसके कारण हमारे संबंध आज उतने अच्छे नहीं रहे जितने होने चाहिए? क्यों नहीं आज लोगों के विचार मिल रहे? क्यों नहीं संस्कार मिल रहे? क्यों तनाव है? क्यों टकराव है? क्यों नहीं हमारे संबंधों में हम खुशी का अनुभव कर पाते? क्या कारण होगा? हम ठीक शब्द नहीं इस्तेमाल करते, भाषा कड़वी होती है, हमारा व्यवहार सही नहीं होता, क्या कारण है? क्यों गड़बड़ हो रही है आज हमारे संबंधों में, जो हमारे संबंध डे बाय डे सिंपल होने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं? बताइए कहाँ गलती हो रही है और उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप बता नहीं रहे लेकिन मन ही मन सोच जरूर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है हमारे घर में तनाव की, जो हमारे विचार नहीं मिलते, तो उसका कारण क्या है? उसके लिए जिम्मेवार कौन? आप जिम्मेवार है या कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार है? आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, वो दूसरों के कारण आपको उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या आपके कारण दूसरों को समस्या हो रही है? किसे समस्या पैदा हो रही है? कौन जिम्मेवार है? दोनों जिम्मेवार हैं, ये कह रहे हैं दोनों जिम्मेवार हैं। और अच्छा, किसे बदलने की जरूरत है? दो व्यक्ति हैं, दोनों को लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो समस्या का कारण है, अब दोनों में से बदले कौन? और हम बदलने की किसको कोशिश करते हैं? बदलने की दूसरे को करते हैं, और बदलना किसको चाहिए? खुद को। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने संबंधों को ठीक करें और जिंदगी में खुशी का अनुभव करें, तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। अगर हम इंतजार करेंगे कि दूसरा ठीक हो जाए, दूसरा बदल जाए, दूसरा वो सब कुछ करने लग जाए जो मैं चाहता हूँ, तो हमारा इंतजार कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति है जिससे आपका टकराव चलता है वो बदलने वाला नहीं है, उसका बदलने का कोई मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है उसका? क्योंकि उसको ये रियलाइजेशन है ही नहीं कि गलती उसकी है। उसके अनुसार गलती किसकी है? उसके अनुसार गलती किसकी है? हमारी। और हमारे अनुसार गलती किसकी है? उसकी। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, खुद को नहीं बदलना चाहते, इसलिए टकराते रहते हैं और रिश्ता कमजोर होता जाता है। आप में से कौन कौन दूसरों को बदलने का प्रयास करता रहता है? दूसरों को बदलने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए मन में सोचते रहते हैं या मुंह से बोल भी देते हैं? कौन कौन प्रयास करते हैं? हाथ खड़ा करो, बाकी नहीं करते, आधे खड़ा कर रहे हैं, बाकी भी करते होंगे जरूर। अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो बताए कि इस प्रयास में कामयाबी मिली, सफलता मिली, आपके चाहने से लोग बदले। छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि नहीं कोई बदला, क्योंकि वो व्यक्ति क्या आपकी बात मानेगा या अपने मन की बात मानेगा? जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगा या जो हमें अच्छा लगेगा वो करेगा? हम क्या करते हैं? हमसे कोई चाहे कि आप ऐसे करो तो हम उसकी बात मानते हैं या जो हमें ठीक लगता है हम वो करते हैं? जब हम नहीं मानते, किसी की मानते, तो दूसरा हमारी बात कैसे मानने के लिए तैयार हो जाएगा? तो अगर आपने अपने जीवन में संबंधों का आनंद लेना है तो एक फार्मूला पक्का कर लो, आज से किसी को बदलने के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि वो आपके सोचने से बदलने वाले नहीं हैं। कई लोग कहते हैं वो व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलता है, मेरी लेग पुलिंग करता है, टांग खींचता है, धोखा देता है, विश्वासघात करता है, हर जगह मेरी निंदा करता है, आलोचना करता है, मेरे पीछे पड़ गया है। कई बार होता ना ऐसा, फिर कई बार हम उसके पास जाते भी हैं कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन क्या वो हमारी बात मानेगा? हम उसे कहें कि आप हमारे बारे में गलत बातें मत फैलाओ, आप हमारी निंदा चुगली मत करो, वो रुक जाएगा? वो आपका कहना मानेगा या आपका मन आपका कहना मानेगा? तुम्हारा मन मानेगा ना, तो अब उसके पास जाने के बजाय अपने मन को कहना है, खुद को समझाना है कि लोग जो कुछ करें उन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन जो वो करें उसको करने के बाद हमने उनके उस काम से डिस्टर्ब नहीं होना है, हमने परेशान इरिटेट नहीं होना है। उन्होंने जो करना है वो करेंगे, लेकिन उससे हमें परेशान नहीं होना है। ये किसको समझाना है? अपने आप को। हमारा मन तो हमारा कहना मानता नहीं, इसलिए हम 24 घंटे किसको ऑर्डर देते रहते? दूसरों को ऑर्डर देते रहते, तुम मेरा कहना मानो, कम से कम तुम तो मेरी बात सुन लो, मेरा मन तो मेरा सुनता नहीं है। तो अब दूसरे को समझाने के बजाय किसको समझाना है? खुद को समझाना है। हम दूसरे को समझा तो सकते हैं, मान लो आपके बच्चे हैं, आप उनको गाइड करोगे, समझाओगे, मोटिवेट भी कर सकते हो, जहां आपने ऑर्डर देना है ऑर्डर भी दे सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपकी बात माने ना माने ये आजादी उसकी है, आपकी नहीं। ये आजादी आपने उस व्यक्ति को देनी है, वो आपके अनुसार चले या ना चले चाहे वो आपके सबसे क्लोज रिलेशन में आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे भी हैं, वो आपकी बात माने या ना माने ये किसकी मर्जी? बच्चों की मर्जी या हमारी मर्जी? बच्चों की मर्जी ना। तो बच्चों को भी वो आजादी दोगे तो आप सुख से रह सकोगे, नहीं तो हर रोज परेशान हो जाओगे, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बात नहीं मानते, वो मेरी बात नहीं सुनता। नहीं, सबको आपने आजादी देनी है, समझाना है, गाइड भी करना है जहां कर करना है, पर ना माने तो आपने फ्रस्ट्रेशन ये नहीं आना है। ये संबंधों को अच्छा बनाने का फार्मूला है। आज हमारे अपने चीजें, हमारे अपने सेंस ऑर्गन्स, हमारी अपनी कर्मेंद्रियां हमारा कहना नहीं मानती। क्या ये हाथ हमारा कहना मानते हैं? मानते हैं हाथ? मानते हैं हाथ कहना? कई बार गुस्से में आके हाथ उठ जाता है, उठता है या उठता? बच्चों का भी उठ जाता है, हाथ में कोई जो कुछ आए उसी चीज को फेंक देंगे, मोबाइल आया मोबाइल फेंक देंगे गुस्से में आके, कई तो घर के बर्तन फेंक देते हैं, कई कॉपी फेंक देंगे, पेन फेंक देंगे, मतलब हाथ आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या हमारा मुंह कहना मानता है? मुंह से कई बार उल्टी सीधी बात निकल जाती है ना, तो बाद में हम कहते सॉरी मेरा भाव ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, निकल गया, इसका मतलब मुंह ने कहना माना? नहीं माना। अच्छा मन कहना मानता है? मन तो मानता ही है, मन तो बेलगाम घोड़े की तरह भागता रहता है, भागता रहता है। सवेरे के सेशन में हम मन की बात कर रहे हैं, तो मन भी हमारा कहना नहीं मानता, हाथ भी कहना नहीं मानते, आंखें कान कोई हमारी बात नहीं सुनता, और हम सपने देख रहे हैं कि सारे बाहर के लोग, हमारे घर के लोग हमारा कहना माने। क्या ये संभव है? जब हमारा हाथ पैर नाक आंखें मन कुछ भी कंट्रोल में नहीं, तो हम दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम दूसरे को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे रिलेशंस कमजोर पड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति के आप बदलने के लिए कहोगे ना, जिसको कहोगे तुम बदलो तुम बदलो तुम सुधर जाओ, वो आपसे दूर चला जाएगा, वो आपके नजदीक नहीं आएगा। क्यों नहीं नजदीक आएगा? क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर रहे, आप उसे कहते तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। तो हम उसको एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजने के बजाय रिजेक्शन की एनर्जी भेज रहे हैं, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी ये आदतें तुम्हारी ये बातें हमें पसंद नहीं है। तो वो रिजेक्शन की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी? एक्सेप्टेंस की एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी। और किसी को कहो कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूं, तो ये कौन सी एनर्जी हुई? नेगेटिव। और जब किसी को आप नेगेटिव एनर्जी भेजोगे, तो वो बात वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा, मानना और उस पर चलना तो दूर की बात। क्या कारण है कि हमारे द्वारा कही गई अच्छी से अच्छी बातें भी दूसरों को सुनने में अच्छी नहीं लगती? हम घर में किसी ना किसी को समझाते रहते हैं ये कर लो ये कर लो, हालांकि वो बातें उनके भले के लिए हैं, हम उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं, पर उनको वो बात सुनने में भी अच्छी नहीं लगती तो उसको धारण करना तो दूर की बात है। क्या कारण है कभी सोचा आपने? हमने उनके भले के लिए कही, उसका कारण है कि बात करने से पहले हमने एनर्जी कौन सी भेजी, क्या सोच के वो बात भेजी, सोचा ये कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जैसे ही आप दूसरे के बारे में सोचोगे ये गलत है तो वो एनर्जी उस तक पहुंच जाएगी और उसे लगेगा ये व्यक्ति मुझे एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करता, ये मुझे पसंद नहीं करता। कई बार माँ बाप को लगता है कि बच्चे हमेशा गलत होते हैं और माँ बाप हमेशा सही होते हैं। क्या ऐसा सच है या नहीं? माँ बाप हमेशा सही और बच्चे हमेशा गलत। बच्चे जिस वक्त सवेरे उठते हैं वो टाइम गलत, रात को जागे रहते हैं वो टाइम गलत। जिस तरह के कपड़े आजकल बच्चे पहनने लग गए माँ बाप कहते वो भी गलत। जैसा खाना वो पसंद करते हैं वो भी गलत, जैसे उनके दोस्त हैं वो भी गलत, जिस तरह का कैरियर वो लाइफ में चूज करते हैं वो भी गलत। तो 24 घंटे बच्चों को कौन सी एनर्जी हम भेजते हैं? नेगेटिव एनर्जी की, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो बच्चे फिर जब आप उनको कुछ कहोगे शब्दों से तो वो शब्द तो पहुंचेंगे उन तक लेकिन वो एनर्जी भी जाएगी कि तुम गलत हो। तो माँ बच्चे क्या करेंगे? वो भी मन में सोचेंगे हम गलत नहीं, गलत तुम हो, हम आपकी बात नहीं मानने वाले, आपको क्या पता दुनिया कहाँ पहुंच गई, आप पुराने विचारों के हैं। ऐसा क्यों हुआ? जिसे हम क्या देते हैं जनरेशन गैप आ गया, इसका कारण क्या है? कि हमने एक दूसरे को स्वीकार नहीं किया। जीवन में अगर खुश रहना है स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। जब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं जब हर चीज हमारे अनुसार नहीं हो पाती, सबसे अच्छा तरीका है स्वीकार कर लो। जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी हम सुखी रह सकेंगे। कच्छ भुज गुजरात का एक इलाका है, 26 जनवरी 2001 वहां भयंकर भूकंप आया, आपने समाचार सुना होगा। हमारी संस्था के लोग माउंट आबू से वहां लोगों की सेवा करने के लिए, जो लोग घर रह गए लोगों के उनकी मदद के लिए रोज जाते थे ताकि लोगों को दोबारा से बसाया जा सके। तो हमारे लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग भी वहां आता है गांव में, वो भी सेवा करता है, वो भी नए घर बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, उनमें वो भी योगदान दे रहा है। तो उन भाइयों ने उससे पूछा कि आपका परिचय, आप कौन हो? तो उसने कहा यहाँ पास में ही मेरा गांव है, जिस दिन भूकंप आया था तो मैं अपने परिवार वालों को घर में छोड़ के अकेला ही खेतों में चला गया था, सवेरे का टाइम था। उन्होंने परिवार के 10-15-20 लोग थे वो सब घर के अंदर थे, उन्होंने नाश्ता करने के बाद खेतों में आना था, मैं पहले चला गया था। इतने में भूकंप आया और सारा मकान ढह गया और मेरे सारे परिवार के 15 लोग दब गए, एक भी जीवित नहीं रहा। तो हमारे भाइयों ने पूछा अच्छा ऐसी बात है, सब मर गए? कहा हाँ सब मर गए। उनको बड़ी हैरानी हुई कि इसका तो सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी यहाँ आके सेवा कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ सेवा फिर क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उसने कहा जो हुआ वो हमारे कर्मों का फल था, सब लोग चले गए लेकिन वो पिछले कर्मों का फल था, अब मैं आगे के लिए पुण्य कर्म इकट्ठे करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने उस सिचुएशन को स्वीकार किया, वो घबराया नहीं, चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, डिप्रेशन में नहीं गया कि मेरे साथ क्या हुआ, सारे परिवार के लोग चले गए, भगवान मेरे को भी ले जाता, कुछ नहीं उसने सोचा। उसने सोचा, उसने परिस्थिति को स्वीकार किया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में इतना है कि मैं आगे के लिए अच्छे कर्म कर लोगों की दुआएं लूं, पुण्य की पूंजी इकट्ठी करूं। तो इसे कहते हैं स्वीकार करना, परिस्थितियों को स्वीकार करना। जो व्यक्ति स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस की पावर बढ़ा लेता है, वो जीवन में बहुत जल्दी खुशनुमा जीवन जीने की कला सीख जाता है। तो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये सारी चीजें आए, चाहते हैं। अब क्या ऐसी बात है कि रिश्तों में वो कड़वाहट जो आती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम दूसरे की गलतियां देखते हैं ना, चाहे वो गलतियां अभी की हो या पुरानी गलतियां हो जिनको हम पकड़ के बैठे हुए, वो जहर जब तक मन में होगा ना पुरानी बातों का, तब तक रिश्ते ठीक नहीं होंगे। किसी ने आपके लिए वो सब कह दिया जो नहीं कहना था, कुछ गलत व्यवहार किया, आपका नुकसान किया, अब वो आपके मन में बैठा हुआ है। अब वो जब तक मन में रहेगा तब तक संबंध अच्छे होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे ना। आपने बातों को पकड़ा हुआ है। इस माइक को मैं पकड़ सकता हूं कितनी देर? इस माइक को मैं ऐसे कितनी देर तक पकड़ सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा एक घंटा। एक घंटे से ज्यादा पकड़ा अगर तो क्या होगा? दर्द होने लगेगा। कोई कहे एक घंटा नहीं, आप एक दिन पकड़ के दिखाओ तो दर्द कम होगा या बढ़ेगा? और ज्यादा बढ़ेगा। कोई कहे एक साल पकड़ के रखो तो दर्द का क्या हाल होगा? अच्छा, कोई कहे साल नहीं, उम्र भर पकड़ के रखो, वही माइक है, उतना ही वजन है, हाथ भी मेरा वही है, लेकिन मेरा हाथ कैसा हो जाएगा? फिर पैरालिसिस हो जाएगा, लोगों को लगेगा ये मूर्ति बन के कौन खड़ा है, स्टैच्यू बन जाऊंगा। अब इस हाथ ने, इसका हाथ का दर्द बढ़ता गया जितनी देर माइक को पकड़ के रखा। अब इस हाथ ने और भी काम करने थे, वो काम होंगे फिर? जब हाथ में दर्द हो गया, हाथ में पैरालिसिस हो गया, अब ये हाथ वो काम करेगा या नहीं करेगा? फिर नहीं कर पाएगा। उसी तरह ये तो माइक को पकड़ने की बात है, हमने मन में भी तो बहुत सी बातों को पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है या नहीं पकड़ा हुआ है? हम कहते हैं उसने जो मेरे साथ किया ना मैं भूला हूं, ना मैं भूलना चाहता हूं, ना मेरी भूलने की कोई योजना है, क्योंकि उसने मेरे साथ जो किया उम्र भर नहीं भूलूंगा। उम्र भर नहीं भूलेंगे तो नुकसान किसका होगा, दर्द किसको होगा? कोई बात हुई, किसने आपका अपमान किया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपने उसी वक्त उस बात को खत्म कर दिया तो दर्द खत्म। एक दिन पकड़ के रखा, एक दिन उसको याद रखा तो दर्द बढ़ेगा, एक साल तक याद रखा तो दर्द और ज्यादा बढ़ेगा, और जो कहते 10 साल तक याद रखेंगे, उम्र भर याद रखेंगे, उनके मन में पैरालिसिस होगा या नहीं होगा? फिर उनका मन परमानेंट डिप्रेशन में जाएगा या नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि वो बातों को पकड़ के रखा हुआ है। भूतकाल की बातें भूत बनकर परेशान कर रही हैं, उनको भूलना है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई सो बात गई, उसका अब चिंतन नहीं करना। जिसने आपको कुछ कहा वो तो कहने के बाद भूल गया, उसे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या कहा था, आपने बात गांठ बांध रखी है, आपको लग रहा है इसने मेरे को ऐसा कहा, मैं इसके घर शादी में गया, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आपने बात पकड़ी तो हर बात, जितनी बार आप उस बात को याद करोगे उसी घटना को आप लाइव करोगे लाइव, और वो दर्द भी लाइव हो जाएगा। जितना दर्द आपको उस वक्त महसूस हुआ था जब हुई थी बात, उतना ही हर बार आपको दर्द महसूस होगा। तो ये फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा बताइए, क्या करना चाहिए फिर हमें? जितनी जल्दी हो सके पुरानी बातों को भूल जाना है, बिंदी लगा दो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। फकीर लोग पुराने जमाने में कहते थे, जो आपके लिए कुछ भी करे, अच्छा करे उसका भी भला, बुरा करे उसका भी भला, तब संबंध अच्छे बनेंगे। और जैसे आप दूसरे का भला सोचोगे, सबसे पहले किसका भला होगा, हमारा या उसका? हमारा होगा ना। तो अब वो पुरानी बातों को याद नहीं करना है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, गुजरी हुई बातों को याद ना कर, गुजरी हुई बातों को याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना होगा होकर रहेगा, तू कल की चिंता में आज की खुशी को बर्बाद मत कर। कई लोग कल की भी चिंता करते रहते हैं, कई लोग पीछे चले रहते हैं। दोनों तरह की चीजें आपकी खुशी के लिए रुकावट हैं। ना आपने पीछे जाना है ना आगे का सोचना है, वर्तमान में जीना है। अभी एक सुंदर सा गीत बजेगा, छोड़ो पुरानी बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे मिलके नए कहानी। तो ये गाना जीवन का मैसेज आपको देता है। क्या मैसेज देता है कि पास्ट इज पास्ट, बीती को बीती जानो, दुनिया ना जीती जानो, जो हो गया वो हो गया, वो अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। क्या आप पास्ट को बदल सकते हैं? क्या आप अपने भूतकाल को परिवर्तित कर सकते हैं? जो एक बार हो गया वो बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करके भूल जाओ, उससे सबक ले लो। अभी एक और सॉन्ग बजेगा कि ये तो था पास्ट की बातों को भूलने का, अब है कि कल की भी चिंता आपको नहीं करनी है। कई सोचते रहते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा, पता नहीं अच्छा होगा या बुरा होगा। नहीं, जो होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा, जब होगा तब देखेंगे, अभी क्यों परेशान हो रहे हो, और जो होगा अच्छा ही होगा। इस ख्याल के साथ ये गाना भी बजेगा। Oh, my God.
धरती का राजा जादू ये बात जाने
सब कुछ अपना है, अपनी धरती, अपना अंबर, कोई डरने की जरूरत नहीं। ना डरने की जरूरत, ना भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत। होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। क्या हमारी चिंता करने से भविष्य बदल जाएगा? तो अब ना पास्ट में जीना है, ना फ्यूचर में जीना है। कब जीना है? केवल वर्तमान का आनंद लेना है, वर्तमान को अच्छा बनाना है। जो इस पल को खुशनुमा बना लेगा, उसका आने वाला पल, आने वाला कल अपने आप अच्छा बन जाएगा। कभी चिंता नहीं करनी। चिंता की चिता परेशानी में डाल देती है। वर्तमान को अच्छा बनाना है। हमारे हाथ में केवल वर्तमान। प्रेजेंट इज ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट ऑफ गॉड। भगवान की सबसे सुंदर प्रेजेंट गिफ्ट ये प्रेजेंट है। हम इसी को अच्छा बना सकते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। अब केवल वर्तमान में जीना है। संबंधों के लिए भी ये बात लागू होती है। केवल वर्तमान के ऊपर फोकस करना है तो जीवन अपने आप अच्छा बनता जाएगा। पुरानी बातों को पकड़ना नहीं है। पकड़ के रखेंगे तो दुख हमें मिलेगा। जिसकी बात को पकड़ेंगे उसे तो पता भी नहीं कि क्या पकड़ के रख बैठे हैं आप। तो आपने केवल और केवल किसको पकड़ना है? अपने वर्तमान को। बस ये जीवन का सूत्र अगर आप याद रख लें। कहते हैं पास्ट एक सपना है, फ्यूचर कल्पना है, केवल प्रेजेंट ही अपना है। इस प्रेजेंट का आनंद लेना है। हम ज्यादातर वक्त 80% तो भूतकाल की बातों को सोचते रहते हैं, 15% फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते, केवल 5% वर्तमान जो अभी करना है उस पे ध्यान देते। होना ये चाहिए कि 80% हमें वर्तमान में रहना चाहिए। हो सकता है ऐसा? कैसे होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर रिश्तों में मधुरता लानी है तो ये जो हमारी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको मिनिमाइज यानी कम करना होगा। आज हमारी बहुतों से अपेक्षाएं हैं, रहती है ना अपेक्षा, ये ऐसे करे, ये ऐसे करे, ये ऐसा करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं करेगा तो नहीं अच्छा लगेगा। ये अपेक्षाएं हमें सुख से जीने नहीं देती। तो अब अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को कम करना है। क्या क्या अपेक्षाएं हमारी होती हैं, क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं, कई तरह की अपेक्षाएं रखते हैं ना। मान लो आप किसी के घर गए, उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से आपको बुलाया, ठीक है, और आप वहां गए, उसने आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीजें बना के 6 तरह की सब्जियां बनाई और आपको सारा दिन लगा रहा, छुट्टी ली उसने ऑफिस से और आपको बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाई, आप बड़े खुश हुए, देखो जी कितना अच्छा खाना मिला। आपने भी उसको कहा कि कभी हमारे घर भी आना, वो अब अगले सप्ताह आपके घर आ गया, 6 बजे शाम के वक्त आया। आपने सोचा चाय का तो अभी टाइम है नहीं, आपने उसको चाय के लिए नहीं पूछा। उसके बाद आपने सोचा कि डिनर तो 10 बजे खाएंगे, डिनर के लिए भी नहीं पूछा। अब वो व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या सोचेगा कि मैं इसके घर में, मैंने इसको अपने घर में बुलाया, इसकी इतनी मेहमान नवाजी की, पूरी छुट्टी लेके बैठा, 6-6 सब्जियां इसको खिलाई और मैं आज इसके घर में आया तो इसने 6 तो क्या एक भी नहीं खिलाई, पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो आप, वो व्यक्ति हर्ट हो गया। क्यों हर्ट हुआ, क्यों हर्ट हुआ, क्यों उसको दर्द हुआ, क्यों उसने, क्योंकि उसने ये अपेक्षा रखी कि जो गुण मेरे अंदर है, मैंने इसकी मेहमान नवाजी की, इसको अच्छा अच्छा खिलाया, अब मैं इसके घर में गया हूं, इसके अंदर भी वो गुण होना चाहिए, वो संस्कार, वो विशेषता, वो क्वालिटी होनी चाहिए और इसे भी मुझे वो चीजें खिलानी चाहिए। अब आप उस, आप वो गुण जो उसके अंदर था, जब उसको दूसरे के अंदर नहीं मिला, वो क्या हो गया, हर्ट, परेशान, दर्द में आ गया, ठीक है। तो ये एक अपेक्षा है कि मैं सच बोलता हूं, दूसरे को भी क्या करना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोलता तो मैं परेशान हो जाता हूं। मैं टाइम पे आता हूं, 6 बजे का टाइम है, मैं टाइम पे आ गया, दूसरे कोई आते ही नहीं है तो मैं अब परेशान हो रहा हूं। एक गलती ये की कि जो गुण मेरे अंदर था वही गुण मैंने उम्मीद रखी दूसरे के अंदर भी हो, वो होना संभव नहीं है। अब अगले साल मैं दोबारा आपके घर चला गया, अब आप 6 सब्जियां खिलाओगे, अब क्या करोगे, अब आपको याद आएगा जब मैं इसके घर गया था इसने कितनी खिलाई थी, इसने तो पानी के लिए भी नहीं पूछा। अब आपने क्या गलती की, दूसरी गलती, आपके अंदर जो गुण था, संस्कार था, अच्छी क्वालिटी थी किसी को भोजन बना के खिलाने का, दूसरे के अंदर जब वो आपको नहीं मिली, आपने अपनी गुड क्वालिटी को, अच्छे संस्कार को छोड़ दिया। तो 2 गलतियां हुई ना, आपने संस्कारों को बढ़ाना है, अच्छे संस्कारों को, अच्छी विशेषताओं को बढ़ाना है। ये नहीं कि दूसरे के अंदर वो ना मिले तो आप भी छोड़ दो। आप एक दिन टाइम पे आए, दूसरे दिन टाइम पे आए, जब आपने देखा कि कोई भी टाइम पे नहीं आता तो आपने भी टाइम पे आना बंद कर दिया, आपने सच बोला, लेकिन दूसरे झूठ बोल रहे हैं तो आपने भी सच बोलना बंद कर दिया। ये गलती हम करते हैं। सदा याद रखो, हर एक की अपनी विशेषता है, हर व्यक्ति में हर विशेषता नहीं हो सकती। आपके अंदर मान लो विशेषता है खाना बनाकर खिलाने की, तो जरूरी नहीं है कि ये विशेषता सबके अंदर हो। अब आप मेरे घर आएंगे, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, मुझे लगेगा ये खाना बनाना तो इतना मुश्किल है जैसे माउंट एवरेस्ट में चढ़ना, तो मैं आपको खाने के लिए पूछूंगा। लेकिन मैं भाषण बड़ा अच्छा करता हूं, ये मेरी विशेषता है, आपकी विशेषता दूसरी है। अब मैं सोचूं आपको कहूं कि आओ स्टेज पे आप भाषण देके दिखाओ, तो आपके अंदर वो विशेषता नहीं होगी। हर एक की अपनी है, सारी विशेषता सब में तो नहीं है, किसी में कौन सा गुण किसी में दूसरा गुण। तो हमें गलती ये नहीं करनी कि जो गुण हमारे अंदर अगर है और दूसरों में नहीं है तो हमें उसे देख के परेशान नहीं होना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, दूसरे के अंदर अगर हमें अपना अच्छा गुण ना मिले तो वो अच्छा गुण अच्छा संस्कार अपना भी छोड़ना नहीं है। हो सकता है ऐसा करेंगे, ऐसा कि जैसा दूसरा करेगा वैसा ही हम करेंगे, इसका मतलब हम तो नकलची हो गए। जो वो कर रहा है हम वो कर रहे हैं। लोग शादी के टाइम के रजिस्टर रख लेते हैं, लिफाफा जो देते हैं ना आजकल, लिफाफे में दे देते हैं शगन, कितना किसने दिया लिख लेते हैं। क्यों लिखते हो भाई, वो तो दे दिया उसने, आप क्यों लिख रहे हो? वो कहते इसलिए लिख रहे हैं जब उनके घर शादी होगी तो हम देखेंगे कितना दिया था, जितना दिया होगा उतना ही हम भी देंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये रिश्ते निभाए जा रहे हैं या सौदेबाजी हो रही है? जितना सामान दुकानदार देगा उतने पैसे देंगे, ये तो सौदा हो गया। इसलिए रिश्तों में प्यार नहीं है, बिजनेस की तरह रिश्ते हो गए हैं, क्योंकि हम दूसरे को देख के कर रहे हैं, जैसा दूसरा करता है वैसे ही हम भी कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि हम अपने अच्छे गुणों को इतने उभारें कि दूसरा हमारी नकल करे, दूसरा कहे कि इसके पास इतने अच्छे गुण हैं, हम भी उन अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारें, तब संबंध अच्छे बनेंगे। संबंधों को अच्छा बनाने का दूसरा तरीका ये कि दूसरे को कॉपी नहीं करना है, आपने अपने ओरिजिनल जो आपके संस्कार हैं वो है शांति के, प्रेम के, खुशी के, आनंद के, उनको आगे लाना है और उनके अनुसार व्यवहार करेंगे, ओरिजिनल क्वालिटीज को सामने लाएंगे तो लोग फिर आपको आपकी नकल करके वो भी अच्छे बनेंगे। किसी ने कहा किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश मत करो, क्यों नहीं करो, खुद अच्छे बन जाओ तो दूसरे की तलाश खत्म हो जाएगी। अब खुद अच्छा बन के दिखाना है, कौन कौन अच्छा बन के दिखाएगा, सब अच्छा बन के दिखाएंगे। देखो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक बात याद रख लेना, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है। अगर खुशी से रहना है, दुख का कारण ये मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत, और सामने वाला भी क्या सोचता है, मैं सही तुम गलत, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। वो कहता मैं सही, वो कहता मैं सही, वो कहता मैं सही हूं, तुम मेरे सही को मानो। दूसरा कहता तुम गलत हो, मैं सही हूं, तुम मेरे सही को मानो। अब कौन सही कौन गलत, एक व्यक्ति 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, दूसरा कहता आप तो बहुत स्लो चला रहे। एक 120 की स्पीड से चलाता है, दूसरा कहता आप बड़े फास्ट चला रहे हो। अब कौन डिसाइड कर रहा है कौन स्लो कौन फास्ट, मतलब राइट स्पीड कौन सी हुई फिर? उसके अनुसार राइट स्पीड है 100। मेरे जैसा कोई धीरे धीरे चलाने वाला होगा तो कहेगा कि मेरे लिए तो 60 की स्पीड राइट स्पीड है। अब किसी के लिए 60 की, किसी के लिए 100 की, कौन सही कौन गलत बताओ। कुछ लोग आप में से आए और आगे बैठ गए, उनको आगे बैठना अच्छा लगा। कुछ लोग आए और पीछे बैठ गए, उनको पीछे बैठना अच्छा लगा। सबकी अपनी अपनी सोच है। अब वो पीछे वाले सोचे कि ये जो आगे बैठे हैं ये अजीब किस्म के आदमी हैं, ये आगे जाके बैठ गए, देखो आगे बैठ गए, अब हमने जाना भी हो तो कैसे जाएंगे वहां से, और कहीं कोई प्रश्न पूछ लिया तो प्रश्न का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, आगे नहीं बैठना चाहिए इसलिए पीछे बैठ गए। और जो आगे बैठे हैं वो सोचेंगे कि पीछे ये तो अजीब किस्म के आदमी है, वो पीछे बैठे हैं, उनको वो अजीब लग रहे हैं, इनको वो अजीब लग रहे हैं, अब अजीब कौन, क्या दोनों अजीब हैं या दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बताओ। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है, ये सोच विकसित करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। किसी ने लाल कपड़े पहने, किसी ने सफेद पहने, अब मैं सोचूं सारे सफेद पहन ले तो ऐसा होगा, किसी की पसंद काले है, किसी की हरे भी पहन सकता है, हरे की अपनी अपनी पसंद है। तो हमने दूसरे की पसंद को रिस्पेक्ट देना है, जो उसको अच्छा लग रहा है उसको रिस्पेक्ट देना है सबसे पहले, उसको रिजेक्ट नहीं करना कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। अगर हम दूसरे को गलत कहेंगे तो दूसरा वाला क्या कहेगा, मैं गलत नहीं तुम गलत हो। हर व्यक्ति अलग है, गलत नहीं है, ये याद रखना। हर व्यक्ति की सोच, व्यवहार, संस्कार, कैपेसिटी अलग अलग है, कोई भी गलत नहीं है। एवरीवन इज डिफरेंट, नो वन इज रॉन्ग हियर, ये याद है। एवरीवन इज राइट अकॉर्डिंग टू हिज और हर पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू हिज और हर संस्कार, जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं उसके अनुसार वो सही है। इसलिए ये भी स्वीकार करना है, हर व्यक्ति को स्वीकार करना है। अगर आप दूसरे को स्वीकार करेंगे तो लोग किसको स्वीकार करेंगे, वो आपको स्वीकार नेचुरली करेंगे। अगर आपने दूसरे को रिजेक्ट किया तो आपको भी वो रिजेक्ट करेंगे। तो अब तनाव को अगर खत्म करना है, संबंधों में खुशियां भरनी है, तो एक फार्मूला और मिल गया। क्या फार्मूला मिला, कि सब अपनी अपनी जगह सही है, हर अपने अनुसार तो सही करता है ना, हर कोई जानबूझ के तो कोई गलत करता ही नहीं है। जैसी उसकी समझ है, जैसी उसके संस्कार है, जैसे माहौल में वो रहता है, जैसा वातावरण उसको मिला उसके अनुसार वो सही है। अब ये बच्चे उछल रहे हैं, हम सोचेंगे उछलते क्यों हैं, शांति से क्यों नहीं बैठते, अरे ये बच्चे हैं, बच्चों का काम ही उछलना है, बच्चे तो चंचलता करेंगे, ये इतना ही काफी है कि इतने बड़े प्रोग्राम में बैठे हैं। तो ये स्वीकार करना पड़ता है, अगर स्वीकार ना करें मैं यहां परेशान होता रहूं कि ये तो बच्चों को क्यों लेके आए, ये तो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बच्चे तो मेरे कहना मानने वाले नहीं है, परेशानी किसको मिलेगी, मेरे को। इसलिए सबको आजादी देनी है, जो कर रहा है अपने अनुसार ठीक कर रहा है, और वो भगवान भी जो करता है वो ठीक करता है या गलत करता है, भगवान ठीक करता है या गलत करता है, ठीक करता है। सब मानते हैं इस बात को कि भगवान की रजा में सब कुछ राजी है, जो भगवान हमें दे हम उसमें संतुष्ट हैं, मानते हैं इस बात को कि भगवान गलत भी करता है, बेइंसाफी करता है, अन्याय करता है, झूठ का साथ देता है, बताओ। कहते एक बार एक व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो भगवान को कोसने लगा कि भगवान तूने बड़ा अन्याय कर रखा है, इतना बड़ा जामुन का पेड़ और छोटे छोटे जामुन लगा रखे हैं और वो भी बड़े ऊपर, और नीचे एक बेल है घीये की, कद्दू की, और उस घीये की बेल पतली सी और इतना बड़ा घीया उसको लग रखा है। कहता भगवान बड़ी बेइंसाफी है, सोच सोच के परेशान हो गया, नींद लगी उसकी। थोड़ी देर बाद ऊपर से एक जामुन गिरा, जामुन उसके नाक पे गिरा, आंख खोली, नाक लाल हो गया था, देखा तो जामुन गिरा है। भगवान आपका धन्यवाद, अब समझ आया तुम जो करते हो सब ठीक करते हो, शुक्र मना ये जामुन आज ऊपर था, अगर ये घिया ऊपर होता मेरा तो मुंह फूट जाता। तब उसे समझ आई कि भगवान की बनाई सृष्टि में हर चीज अपनी अपनी जगह सही है। अब देखो नाक जहां होना चाहिए वही है ना, अगर इसको पीछे लगा देते तो आप सो भी नहीं पाते। तो हर चीज परफेक्ट है, जो कुछ हो रहा है सोचो अच्छा हो रहा है, ये सोचेंगे तो आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। भगवान को शिकायतें ना दो, भगवान को शिकवे शिकायतें कंप्लेंट ना करो कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, उसको दे दिया, पड़ोसी को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, मुझे नहीं दिया। एक पुराना गीत था कि मुझको भी लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को कराई है, कैसे कैसों को कराई है, मुझको भी लिफ्ट करा दे। किसी को सोना दिया, किसी को चांदी दिया, किसी को हीरे दिए, किसी को मोती, अरे भगवान मुझे भी कुछ दे। उस गाने के बड़े अच्छे बोल हैं। तो हम भगवान को कहते रहते हैं कि मुझे भी दे, ये शिकवे शिकायतें नहीं, अब उसका शुक्रिया करना है, जो कुछ उसने दिया है मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे उससे ज्यादा दिया, ये विश्वास होना चाहिए। जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा मुझे ऊपर वाले ने दे रखा है, लेकिन हमारी आदत क्या बन गई है, जो मिला है उसमें खुश नहीं रहते, उसको देखते नहीं, जो नहीं मिला है 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हैं। इतना अच्छा शरीर मिला है और क्या चाहिए, जिसको टांग ना मिली है उससे पूछना, जिसकी एक आंख फूट गई है उससे पूछना आंखों की क्या वैल्यू है, जिसके कानों में सुनाई ना देता हो उससे पूछना कि कान कितने अच्छे हमें मिले हैं, तब आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति मंदिर के अंदर भगवान को कोस रहा था, भगवान तूने मुझे गरीब बनाया, मैं अब अच्छे जूते नहीं पहन सकता। बाहर आके देखा तो एक व्यक्ति के पांव ही नहीं थे। वो कहता भगवान थैंक यू, तुमने पांव तो दिए, जूते में अपने आप ले लूंगा कहीं से। तो भगवान का थैंक यू करना है, सोचो ऑल इज वेल, जो हो रहा है गुड, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। हमारी नेचर है, उस नेचर को अब बदलना है। नेचर क्या बन गई है कि जो है नहीं उसके पीछे भागते हैं। अब मुंह में कितने दांत हैं हमारे, सोच में पड़ गए, 32 है 28, बच्चों के कहां हैं 32 तो बड़े बड़ों के होते हैं, ज्यादातर के तो 28 ही होते हैं, किसी किसी को 32 आते हैं, चलो जितने भी हैं हम गिनते भी नहीं कभी। आज डेंटिस्ट के पास जाओ और वो एक दांत निकाल दे तो सारी रात जीभ किसको ढूंढेगी, सारी रात जीभ कहां जाएगी, जहां दांत निकला हुआ है। तो हमारे ये संस्कार बन गए हैं कि जो मिला लिया उसके पीछे भागेंगे, जो है ऑलरेडी पहले उसका तो आनंद लो। स्कूटर मिला हुआ स्कूटर को नहीं देख रहे, उसको मोटरसाइकिल क्यों मिल गया, उसके पास कार आ गई, पहले स्कूटर का तो आनंद ले लो, जो कार की जरूरत पड़ेगी कार भी आ जाएगी कहीं से। उस भगवान का धन्यवाद करना है, थैंक यू करना है और सोचना है सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। एक बार एक गुरुजी थे, गुरुजी के तीन चेले थे, कितने चेले थे, तीन चेले। पहला चेला गुरुजी के पास आता है, गुरुजी ये बात ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, गुरुजी कहते यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। दूसरा चेला कहता गुरुजी ऐसा थोड़ी होता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, गुरुजी कहते यू आर राइट, तुम ठीक हो। तीसरे चेले को सवाल पैदा हुआ, कहता गुरुजी एक प्रश्न है, कहते पूछो। कहते इसमें एक बात कही आपने कहा ये ठीक है, दूसरे ने इससे उल्टी बात कही आपने कहा ये भी ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो ये ठीक होगा या वो ठीक होगा, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? गुरु जी कहते यू आर ऑल्सो राइट, तुम भी ठीक हो, जो हो रहा है ऑल इज राइट, ऑल इज वेल, ये सोचो तो ठीक हो जाएगा। अपनी फ्रीक्वेंसी उस भगवान की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर लो, उसके साथ तालमेल बिठा लो, उसके हाथ में अपनी उंगली दे दो, वो जहां ले जाना चाहे उसकी हर रजा में राजी रहना सीखो। जो वो कर रहा है ठीक कर रहा है, वही कर रहा है जिसमें मेरा भला होगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहेंगे, वो भी माता पिता है, वो भी कष्ट नहीं देगा, वो भी हमें खुशियों से ही भरेगा। तो इस संकल्प के साथ ये आज आपको टॉनिक मिला होगा, सबको मिला टॉनिक, खुशी का टॉनिक। कल का टॉनिक लिया था घर जाके, उसके ऊपर मनन चिंतन किया था, उसके ऊपर संकल्प किए थे, बार बार इसको पढ़ना है और तब ये बातें आपके जीवन में आएंगी। तो आज का टॉनिक बात कर रहा है कि रिश्तों में हमें देने का भाव रखना है, लेने के बजाय क्या करना है, देने का भाव। जो आपको चाहिए वो बांटने लग जाना है, प्यार चाहिए प्यार बांटने लग जाओ, खुशी चाहिए खुशी बांटने लग जाओ, और दूसरे को बदलने के बारे में नहीं सोचना है, केवल और केवल अपने बारे में ही सोचना है। ठीक है, तो अभी सभी खड़े हो जाएं और ये संकल्प करेंगे, तो सब अपना हाथ आगे करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, जो मैं कह रहा हूं वही रिपीट करेंगे। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए मुझे दूसरों से प्यार, खुशी या सम्मान मांगना नहीं है बल्कि उन्हें देना है। दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की या सुधारने की कोशिश करने के बजाय मुझे सारा ध्यान खुद को बदलने पर लगाना है। मुझे मन में बातों को, दर्द को, गुस्से को, नफरत को पकड़कर नहीं रखना है। ये बात अब पक्की गांठ बांध लेना और ये बात याद कर लेना जो इस पे महामंत्र लिखे हैं। सभी एकदम शांति से बैठ जाएं, उससे पहले कि हम लास्ट में एक्सरसाइज करें, म्यूजिकल एक्सरसाइज, दो मिनट के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। आपको पता हो कि हर रोज सवेरे 6 से 7 इसी पंडाल में राजयोग मेडिटेशन, भगवान का ध्यान कैसे लगाया जाता है, कैसे वो योग सिखा जाता है, उसके ऊपर सवेरे सेशन चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग सवेरे आज आए भी थे, कल भी वो सेशन रहेगा, 4-5 दिन सवेरे भी रहेगा और शाम को ये जनरल सेशन शाम को रहेंगे, तो आपने दोनों का लाभ उठाना है। अब ये एकदम शांति में बैठ जाएं सभी, बिल्कुल शांत, और कमर सीधी करते हुए अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को एक बिल्कुल शांत एकांत स्थान पे ले चलेंगे। नमः शाम का वक्त है, सागर के किनारे आप बैठे हैं, दूर सागर के बीच सूरज अस्त हो रहा है, पंछी अपने घरों को लौट रहे हैं, बहुत ही शांत वातावरण है। ऐसे शांत वातावरण में खुद को याद दिलाएं और कह दें अपने आप को कि आज से मुझे अपने संबंधों को ठीक करने के लिए सारा का सारा ध्यान खुद पर देना है, दूसरों को बदलने के बारे में नहीं सोचना है। जो बातें खत्म हो गई, जो बीत गई, उन बातों को, उस दर्द को, उस नफरत को अब पकड़ कर नहीं रखना है। आज से मुझे अपने गुणों को, अपने संस्कारों को बढ़ाना है, अच्छे संस्कारों को बढ़ाते जाना है, और जितना जल्दी हो सके दूसरों की बातों को, दूसरों की आदतों को स्वीकार करते जाना है। अपेक्षाएं, इच्छाएं कम करते जाना है, क्योंकि मुझे अपने जीवन को, अपने रिश्तों को अच्छा बनाना है, मधुर बनाना है। मुझे अपने घर से प्यार का वातावरण निर्माण करना है। भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं संबंधों को मधुर बनाने की। आज से मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया। मैं आज से सबको अच्छा अच्छा ही कहूंगा, सब अच्छे हैं। भगवान जो मेरे साथ कर रहा है, जो कुछ उसने मुझे दिया, बहुत अच्छा। शुक्रिया करें उस प्यारे भगवान का कि उसने आपको अच्छे से अच्छा, आपकी योग्यताओं से भी ज्यादा अच्छा आपको दिया है। ओम शांति, ओम शांति। अपनी आंखें खोल लें। इस तरह का अभ्यास हर रोज अगर हम 5 मिनट भी करें तो हमारे मन की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है, फिर मन ताकतवर बन जाता है, कमजोर नहीं रहता। कल के सेशन में हम मन को कैसे पावरफुल बनाएं, उसी के ऊपर बात करेंगे कि अच्छी सोच कैसे विकसित हो, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, कैसे हमारे थॉट्स हमारे अनुसार चले और वो थॉट्स मन में आए जो हमें चाहिए। तो कल का विषय क्या रहेगा, कल शाम का? अच्छी सोच से अच्छे दिन। और कल सुबह हम आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर बात करेंगे, पांच प्रकार के आत्मा के संस्कारों की बात करेंगे, और आत्मा कहाँ निवास करती है, कहाँ से सृष्टि से आई है, ये कल सुबह 6 से 7 के बीच में रहेगा। और कल शाम 6 से 7.30 के बीच अच्छी सोच से अच्छे दिन।